प्लानिंग। अंश को ऑफिस में देखकर संजना भीतर ही भीतर बिफर उठी और इरिटेट होकर सोचने लगी, आखिर ये सपोला अरमान के साथ यहाँ क्यों आया है? अब ये मेरे और अरमान के बीच कबाब में हड्डी बनकर सब कुछ खराब कर देगा। हाँ, अब आगे। अब जैसे ही संजना की नज़र अरमान के ठीक पीछे आती हुई आस्था पर पड़ी, तो वैसे ही संजना थोड़ा परेशान हो गई। उसने ये नहीं सोचा था कि अरमान अपनी याददाश्त जाने के बाद भी आस्था को इस तरह अपने साथ ऑफिस लेकर आएगा। जब आस्था ने संजना को देखा तो उसका दिल कड़वाहट से भर गया। उसका मन किया कि वो संजना के कॉलर को पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर धकेल दे, लेकिन अफसोस, वो अरमान के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो अरमान न जाने उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप सोचने लगेगा। इसलिए वो जलन और गुस्से की आग को अपने दिल में दबाकर चुप रही। फिलहाल आस्था संजना को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अरमान के साथ उसके केबिन में चली गई। वहीं संजना गुस्से में अपनी उंगलियों को कसने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून उसकी हथेलियों में गड़ने लगे, जिससे खून तक निकल आया। लेकिन उसके गुस्से और नफरत में कोई कमी नहीं आई। अचानक कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल वो फाइलों का ढेर लेकर अरमान के सामने आ पहुंची और धीमी आवाज में बोली, सर, आपने जिस जिससे मीटिंग के लिए कहा था, ये सब उनकी डिटेल्स हैं। सभी के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। बस मिस्टर अविनाश रघुवंशी अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं, तो उनके साथ आपकी मुलाकात अगले हफ्ते ही हो सकती है। इसके लिए मैंने पहले ही उनसे आपका अपॉइंटमेंट ले लिया है। जैसे ही आस्था ने अविनाश रघुवंशी का नाम सुना तो वैसे ही उसका चेहरा एकदम ठिठक गया, क्योंकि आस्था नहीं चाहती थी कि उसके भाई या दादाजी को अरमान की याददाश्त या राजवीर जिंदल के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए वो एकदम से हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं अरमान जी, मिस्टर अविनाश रघुवंशी से नहीं मिलना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ मीटिंग कैंसिल कर दो। जैसे ही आस्था ने अचानक ये बात कही तो ये सुनकर अगले ही पल अरमान की आंखें कठोर हो गईं और वो एकदम से सोचने लगा, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलों में टांग अड़ाने की। फिर वो एकदम से खड़ा हुआ और आस्था को नाराजगी से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस के मैटर में बीच में बोलने की? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरे बिजनेस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इस तरह के फैसला कैसे ले सकती हो? मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं, ये मेरा फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। खबरदार, अगर अब तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो। फिर वो सख्त लहजे में एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे बेटे की देखभाल करने आई हो तो बस वही करो। इस बीच किसी और मामले में दखलअंदाजी करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए अरमान की आंखें ठंडी चेतावनी से भरी थीं। अरमान की बेरुखी देखकर आस्था का चेहरा कड़वी मुस्कान से भर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वहीं संजना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर पहले उसे लगा रहा था कि शायद अरमान आस्था को लेकर इसलिए आया है क्योंकि वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया है, लेकिन अब जब उसने खुद अरमान के मुंह से ये सुना कि वो सिर्फ अपने बेटे को संभालने के लिए आस्था को वहां लेकर आया है, तो अब जाकर उसके बेचैन दिल को बहुत सुकून मिला। संजना को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आस्था का एक अतीत था और उसका एक भाई भी था। उसने कभी आस्था की जिंदगी के बारे गहराई से जानना जरूरी नहीं समझा था। उसे तो बस यही लगता था कि आस्था उसके गाँव में पली बढ़ी सीधी साधी नानी माँ की नवासी है जिन्होंने उसे पाल पोसकर बड़ा किया है, लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी क्या थी ना उसे पता था ना उसने कभी जानने की कोशिश की थी। फिलहाल अरमान ने संजना से कहा, तुम जाओ और आज की मीटिंग्स की तैयारी करो, और हाँ, इस मीटिंग्स में तुम भी मेरे साथ रहोगी, ठीक है? ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद रोबीली थी। जैसे ही ये शब्द अरमान के मुंह से निकले तो ये सुनकर आस्था को झुंझलाहट हुई और उसके तन मन में आग सी लग गई, पर उसने खुद के इमोशंस पर काबू रखा। तभी अरमान का फोन अचानक बजा। वो फोन लेकर जल्दी से बात करने की मुद्रा में बाहर जाकर खड़ा हो गया। मौके का फायदा उठाकर आस्था अगले ही पल संजना के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के सामने आकर इस तरह की नौटंकी करोगी और अरमान का फायदा उठाओगी तो मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी? नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं तुम्हें पहला और आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली दूर चली जाओ। मैं तुम्हें अपने गाँव वाली होने के नाते एक आखिरी मौका दे रही हूँ, पर याद रखना, अगर तुमने मेरे पति का फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं तुमसे ये मौका भी छीन लूंगी, और जो बनावटी मेकअप तुमने अपने इस चेहरे पर थोप रखा है ना, वो नोच नोच कर निकाल दूंगी। जैसे ही आस्था ने संजना को ये धमकी दी तो संजना की आंखों में अचानक गुस्से की चिंगारी भड़की। वो आस्था को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी, और तभी उसकी नज़र अंदर लौट रहे अरमान पर पड़ी। इस मौका का फायदा उठाकर संजना ने अचानक भद्दी चाल चली और अचानक आस्था का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे अपना गला दबाने का नाटक शुरू करने लगी, जिसे देखकर सामने वाले को ऐसा लगेगा जैसे आस्था सच में संजना का गला दबा रही हूँ। अचानक संजना इमोशनल होने का नाटक करते हुए चिल्लाने लगी, मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। संजना का ये नाटक देखकर आस्था थोड़ी देर के लिए दंग रह गई, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अरमान वापस आ चुका है, तब उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अरमान तुरंत वहां आ पहुंचा और एक झटके में आस्था का हाथ पकड़कर संजना की गर्दन से दूर हटा दिया और अगले ही पल वो गुस्से से तमतमा उठा। फिर आस्था को संजना से दूर करते हुए बोला, तुम ये क्या ड्रामा कर रही हो? तुम जंगली औरत हो क्या? ये क्या बदतमीजी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी के साथ इस तरह मिसबिहेव करने की? अरमान ने आस्था को डांटने के साथ साथ बुरी तरह से फटकार लगाई थी। आस्था अरमान को बताना चाह रही थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर अरमान ने उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे सख्त लहजे में डांट दिया। वहीं संजना होंठ दबाकर हंसी और फिर अरमान की ओर देख के एकदम से बोली, सर, आपने मुझे कुछ दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। शायद वही बात मैडम को बुरी लगी, इसलिए उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। सर, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर संजना अरमान के पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर रोने का नाटक करने लगी। अरमान ने उसे दिलासा देने के लिए गले से लगा लिया। ये नजारा देखते ही आस्था के तन मन में पूरी तरह आग लग गई और उसकी आंखें भर आईं। वो अपना दिल बैठा हुआ सा महसूस कर रही थी। तभी अचानक उन्हें सोफे पर बैठे हुए अंश की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अंश को रोता हुआ देखकर अरमान का ध्यान पूरी तरह संजना पर से हट गया और वो तुरंत संजना से दूर हो गया और सीधा जाकर उसने अंश को अपनी गोद में उठा लिया। अरमान ने जिस तरह संजना को खुद से दूर धकेला था और अंश को गोद में लिया था, ये महसूस करके संजना को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से से होंठ भींचे, मन ही मन सोचा, आस्था के साथ साथ उसका ये बच्चा भी मेरा दुश्मन बन बैठा है। फिलहाल संजना गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से बाहर चली गई।
वहीं आस्था मायूस खड़ी रही। कुछ देर पहले उसके पति ने उसके साथ जो बर्ताव किया था, उसने उसे अंदर तक झकझोड़ दिया था। अरमान ने जब संजना को गले लगाते हुए उसे ये कहा था कि तुम्हें मैं यहाँ किसी और काम से लेकर आया था, तुम ये यहाँ क्या फालतू काम कर रही हो, अपना काम ठीक से करो और हाँ, ऑफिस के मामले में दोबारा दखलअंदाजी मत करना वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये सारी बातें सोचकर आस्था इरिटेट हो रही थी। फिलहाल अपने उमड़ते हुए जज्बातों को दबाने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं संजना जैसे ही अपने केबिन में गई, उसके मन में तुरंत शक जागा। उसने सोचा कि उसे अविनाश रघुवंशी के बारे में कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए। आखिर ये आस्था मिस्टर अरमान सिंघानिया को उस अविनाश रघुवंशी से मिलने के लिए क्यों रोक रही है? तभी उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। उसे याद आया, अरमान ने उसे कुछ दिन पहले ये पता लगाने का काम सौंपा था कि रघुवंशी मेंशन में जन्माष्टमी त्योहार आस्था ने किसके पर मनाया था। अब उसे अच्छी तरह से याद आ गया कि आस्था ने रघुवंशी मेंशन में धूमधाम से त्योहार मनाया था, वो भी बिना रघुवंशी परिवार की अनुमति के। ये सब सोचते हुए अचानक संजना के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिल गई और अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि क्यों आस्था रघुवंशी परिवार से अरमान को मिलने नहीं दे रही है, ताकि उसका राज सबके सामने न आ जाए। संजना के मन कई सारे सवाल उठ रहे थे जिसे वो पहले समझ नहीं पाई थी। इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसे जल्द से जल्द अविनाश रघुवंशी को यहाँ बुलाना होगा, ताकि उन्हें ये सच बता सके कि उन लोगों की इजाज़त के बगैर इस गांव की आई गवार लड़की ने उनके मेंशन का बिना पूछे यूज़ किया है। फिर अरमान के सामने आस्था की जो बेइज्जती होगी तो उसका कितना एंटरटेनमेंट होगा, ये सोच सोचकर संजना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिलहाल आस्था अरमान के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। वैसे भी अरमान जब जब उसे कुछ बुरा भला कहता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके दिल को भीतर से कोई कुरेद रहा हो और ये एहसास उसे बेइंतहा दर्द देता था। वेल, संजना की आंखें उसके इरादे साफ बयान करती हैं कि आखिर मामला क्या है। तंग आकर आस्था ने ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें उसी ग्रुप में शेयर कर दी थी जहां सभी लड़कियां मौजूद थीं। उन्होंने अबीर सिंह राठौड़ को भी उस ग्रुप में ऐड कर लिया था। जब सबको संजना अरमान की बातें पता चलीं तो सब आस्था की सिचुएशन को लेकर परेशान हो गए। तभी ध्रुव और आहान मायूस होकर बोले, हमने कभी नहीं सोचा था कि अरमान भाई दूसरी लड़की के लिए भाभी के साथ ऐसी कोई हरकत करेंगे। वहीं रौनक, राधिका और रश्मि भी चिंता से बोली, हमें आस्था के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो भी हम अबीर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिलहाल आकाश के पास उसके खास आदमी का मैसेज आया था जिसके पास राजवीर की कुछ जानकारी थी। जैसे ही ये मैसेज मिला वैसे ही सभी लड़के एकदम सतर्क हो गए। उन्होंने कहा, हमें सबसे पहले वहां जाना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तभी ध्रुव ने बताया, आज वंशिका को एंटीडोट लेने के लिए भी जाना था। इस पर राधिका और रश्मि ने उन्हें सुझाव दिया कि वो वंशिका के साथ चली जाएगी और आप सबको राजवीर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है पहले आप सब उसके बारे में अच्छी तरह से तहकीकात करिए। इस पर वंशिका हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, यही सही रहेगा, आप लोग वहां जाइए और हम एंटीडोट सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिर उन्होंने अबीर को अरमान के ऑफिस में जाने का सुझाव दिया ताकि वो आस्था की मदद कर सके, क्योंकि आस्था काफी परेशान लग रही थी। फिलहाल सभी लड़के अब अपने फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुके थे और तीनों लड़कियां भी एंटीडोट लेने के लिए निकल पड़ी। तभी रास्ते में रश्मि के फोन पर एक कॉल आया, जिसे सुनते ही रश्मि के चेहरे से पसीना छलकने लगा। उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। रश्मि दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वंशिका ने चिंतित होकर पूछा। इस पर रश्मि ने परेशान होकर जवाब दिया, वो नानी माँ का फोन था, रौनक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे अभी घर जाना होगा। ये सुनकर सबको कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद रौनक की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया है या फिर उसके साथ कोई और समस्या हो गई होगी। वंशिका तुरंत उसे आश्वासन देते हुए बोली, एक काम करते हैं रश्मि दीदी, राधिका दी, आप दोनों घर जाइए, मैं प्रोफेसर साहब से मिलकर आती हूँ, तब तक आप लोग रौनक का ध्यान रखिए, मैं काम खत्म करके जल्द वापस आती हूँ, अगर जरूरी लगे तो आप लोग उसे हॉस्पिटल ले जाइए। ये कहकर उसने सबको वहीं से जाने के लिए कहा और खुद दूसरी कार न मिलने पर ऑटो लेकर प्रोफेसर की लैब की ओर रवाना हो गई। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए।